ఓం శాంతి. ఆనందమంగళం ఈ సంసార్ కో హమారీ సకాస్ కీ బహుత్ జరూరత్ హై ఔర్ యే జరూరత్ దినో దిన్ బఢ్తీ జాయేగీ. హమారీ వైబ్రేషన్స్ యోగ్ కీ శక్తి తో హమే అప్నే కో తయ్యార్ కర్నా హై సబ్ కో మదద్ కర్నే కే లియే. संसार में सब कुछ खराब चीजें बढ़ती जा रही हैं, दुख से अंति बढ़ रही है. लास्ट में मैं सिंगापुर में था, पैसा बहुत, छोटा सा देश सिंगापुर, 40 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर चौड़ा, 45 लाख लोग रहते हैं. नीचे तो जगह नहीं बची, ऊपर को जाते हैं रहने. 12 घंटे हर एक को काम करना होता है. अच्छा, ऐसे वैसे नहीं चलता वहां कि सरकारी काम है तो चला दो. एक एक घंटा आने जाने में 14 घंटे. उसके बाद स्ट्रेस, दिमाग पर एक प्रेशर. तो पैसा तो मिलता है लेकिन जीवन का सुख ज्यादा नहीं मिलता. फिर दो दिन जब खाली होते हैं सैटरडे संडे, तब घूमते फिरते खूब खाते पीते हैं. मैं देखता था, प्रोग्राम होते थे वहां. मैं 3 दिन ही था, 3 दिन में क्लासेस भी कई हुई तो पब्लिक प्रोग्राम भी हुए. एक ही टॉपिक रखते थे कि जो बिजी लाइफ है इसको कैसे एंजॉय करें, इजी बनाएं. क्योंकि 14 घंटा बाहर रहने के बाद जब कोई मनुष्य घर लौटता है, फिर कल उसे जाना है काम पर, तो तनाव से सोता है, तनाव से उठता है. हंस रहे थे लोग जो जिनको हल्के काम हैं, कि जब फ्राइडे आता है ना, लास्ट फ्राइडे पूरा हो रहा है, हमारी खुशी बढ़ने लगती है, 2 दिन खाली हैं अब. और जब संडे श्याम होने लगती है तो दबाव फिर बढ़ने लगता है, कल फिर जाना है. हम सबका जीवन बहुत सुंदर है. मैं बहुत चीजें याद करता था वहां कि मनुष्य चाहे तो अपने जीवन का आनंद ले सकता है. उनको भी हमने यही सिखाने की कोशिश की, मन को हल्का करो तो 14 घंटे का भी आप आनंद लेंगे. इसको दबाव न बना दो, इसको प्रेशर न फील करो, इसका आनंद लो. 1 घंटा आपको आना जाना है कार में, फ्री हो, अच्छे अभ्यास करो. रेड लाइट आ गई, सिग्नल आ गया, बहुत आते हैं ना वहां, बहुत आते हैं. सकास दो सबको, प्लान बनाओ एक पुरुषार्थ का. थाईलैंड का जरा सुना दो, लैंड ऑफ ब्रह्मा. मुझे लगा कि भारतीय इतिहास में ब्रह्म देश का वर्णन है, तो अब का बर्मा, म्यांमार, और उससे अगला देश थाईलैंड, इन दोनों का ही नाम ब्रह्म देश रहा होगा. और भारत वहां तक फैला हुआ था, ये भारत के इतिहास में भी है. वहां के लोग बहुत खुश, लैंड ऑफ स्माइल, मुस्कुराहट का देश. वहां कोई टेंशन नहीं, आनंद मना रहे हैं. बुद्धिस्ट लोग सब, बुद्ध धर्म के मानने वाले, लेकिन बाबा के बच्चों की संख्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है. बहुत अच्छा माहौल, एक इतना बड़ा हॉल बहनों को मिल गया, सेंटर से जुड़ा हुआ, किराए पे, बहुत अच्छा वहां दिखा हमें. हम सभी, मैं जो इन सब चीजों से महसूसता लेकर आता हूं वो ये कि हमें इन्हें मदद करनी है, हमें इन्हें चार्ज करना है. हम अपने को इतना शक्तिशाली और योग्य बनाएं कि हम इन्हें वाइब्रेशंस दे सकें. तैयार हैं आप? कई तो तैयार हैं. करेंगी तैयार माताएं अपने को? माताओं से पूछ रहा हूं, बहुत माताएं आ गई आज, करेंगी तैयार या ग्रस्त? मोह ममता, तेरा मेरा, इनसे ऊपर उठना पड़ता है जब हमें संसार को सकार देनी है। मैं भी ये लक्ष्य रखता था जब प्रोग्राम होते थे, क्लास होती थी, कि क्लास से भी ज्यादा महत्व इस समय उस स्थान पर वाइब्रेशंस क्रिएट करने का है। तो मैं जो मेरे साथ थे उनको भी ये सिखाई बाबा की बात, याद होगी आपको, बाबा कहते हैं कहीं भी प्रोग्राम हो सर्च लाइट दो वहां, तो आने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, आने वालों को जिज्ञासा भी बढ़ेगी कि हमें यहां से कुछ सीख कर जाना है। कई जगह मेरा एक बहुत सुंदर टॉपिक चला, यहां हम वो नहीं कराते कभी, मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग पावर को कैसे बढ़ाएं। उन देशों में इसकी बड़ी महत्ता है, हीलिंग पावर माना रोगों को ठीक करने की शक्ति। तो योग अभ्यास के द्वारा हम रोगों को कैसे ठीक करेंगे, ये प्रोग्राम तो चार पांच लेक्चर इस पे थे, बहुत अच्छा रहता था वो। इस बहाने लोग योग भी सीखते थे और उनकी बीमारियां भी ठीक होने लगी। सब जगह बीमारियां वही बढ़ रही हैं जो यहां बढ़ रही हैं। उदाहरण एक दे दो, एक माता को दो बच्चे, एक साल का और 3 साल का, दोनों खाना ही नहीं खाते, दूध भी नहीं पीते। वो हैरान कि ये जी कैसे रहे हैं, अब दुखी, डॉक्टरों की समझ में कुछ आता नहीं, भी क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता, सब कुछ तो ठीक ठाक है। ऐसे ऐसे केस जिनका इलाज संसार में कहीं नहीं है, तो वो लोग सब खींच के आ जाते थे प्रोग्राम में कि यहां से हमें कुछ इलाज मिल जाएगा। तो मैं आपको यही याद दिलाऊंगा, इस संसार को हमारे वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है, हमारे संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को भी कुछ शक्तिशाली आत्माओं के वाइब्रेशंस की बहुत जरूरत है या नहीं? क्योंकि माया के युद्ध में बहुत आत्माएं फेल हो रही हैं और फेल हो जाएंगी, जिन्होंने जीवन में अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया, टाइम वेस्ट किया, बाबा की बातों पे ध्यान नहीं दिया, या सोचते रहे विनाश तो होता नहीं, अपने परिवार में काम धंधों में लग गए, अपने पुरुषार्थ के लिए समय ही नहीं दिया, माया के युद्ध में उन्हें काफी कठिनाई अब से होने लगी है और ये कठिनाई बढ़ती जाएगी। इसलिए सभी बाबा के बच्चे, मैं कहूंगा हमारे इस ग्रुप के जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, बहुत हैं आप में से, मैं कईयों के चेहरे देखकर ही समझता हूं, बहुत अच्छे अभ्यास में कई रहते हैं, सवेरे शाम आधा आधा घंटा अपना योग विश्व सेवा के लिए समर्पित करेंगे। योग तो करना ही है, इस संकल्प से कि इस योग से विश्व का कल्याण हो, इस योग से सभी के दुख दूर हो, इस योग से सभी के विघ्न नष्ट हो और हम वाइब्रेशंस फैलाएंगे, तो योग अभ्यास में आनंद भी बहुत आएगा और संसार को मदद भी बहुत मिल जाएगी। तैयार है ना शांतिवन वाले? शांतिवन वालों को ये काम ज्यादा करना है और इसके लिए जरूरी होता है अपने को और चीजों से डिटैच रखना, क्योंकि किसी भी बड़े संगठन में, हमारा तो बहुत बड़ा संगठन है ना, शायद ही किसी का ऐसा संगठन होता हो, नौकरी करने वाले तो हजारों हो सकते हैं किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में, पर इस तरह समर्पित जीवन जीने वाले, पवित्र जीवन जीने वाले बहुत शायद होंगे ही नहीं, कहीं बहुत क्या कहूं, कहीं है ही नहीं। तो हमें ये लक्ष्य बनाना है कि बहुत सारी बातों से डिटैच, साक्षी दृष्टा, जो हो रहा है वही सत्य है, जो हो रहा है वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। कल परसों मुरली भी चल चुकी है, शायद कल ही थी परसों ड्रामा पर। और रोज रोज कल्याण किनका होता है? जो याद में रहते। कितनी सुंदर प्रेरक बात, वही बात बाबा विन विन डगित से एक बहुत पावरफुल ढंग से हमें सुनाते हैं। और आज हम चर्चा करेंगे दूसरी बात पर, कल की। हम सभी अपना दैवी स्वराज्य स्थापित कर रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता। गॉडली प्लान है ये, इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां काम कर रही हैं। हम सब बाबा के मददगार हैं इस महान कार्य में ही। उससे जुड़ी हुई मुरली आज भी थी। हम अपना राज स्थापित कर रहे हैं भारत और विश्व में, शांति पवित्रता स्थापित हो रही है। तो जो राज स्थापित कर रहे हैं, अब हम दो चीजें लेंगे इस पर, पहले सभी चिंतन करेंगे बहुत अच्छा। राज स्थापित करने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? राजा। राजा जैसी क्वालिटी आप में से बहुतों ने चंद्रगुप्त की सीरियल की कुछ एपिसोड देखे होंगे, बहुत सुंदर चला, मैं तो सारे देख नहीं सका, थोड़े थोड़े किसी ने दिखाए। चाणक्य चंद्रगुप्त को क्या बना रहा था? सम्राट। उसमें संपूर्ण निर्भयता आ जाए, प्रजा को सुख देने के संस्कार आ जाए, सहन करने की बहुत जबरदस्त शक्ति आ जाए। राज्य स्थापित करने में सब कुछ नष्ट भी हो सकता है, उसके लिए भी तैयार, सब कुछ कुर्बान करना पड़े, करें। महात्मा गांधी ने भी आंदोलन चलाया, अनेक कष्ट हुए, सहन करने के लिए सब तैयार रहे या नहीं? लोगों को जेलों में डाल दिया गया, कष्ट दिया, पुलिस ने पीटा, किसी को काला पानी भेज दिया, परिवार के परिवार नष्ट हो गए, लेकिन रुके नहीं। ये शक्ति, बहुत ज्यादा बोल्डनेस शक्ति और बहुत ज्यादा सहनशीलता, कुर्बानी का संकल्प, यह है राजाई संस्कार। प्रजा को सुख देना है, अपना स्वार्थ नहीं, अपना स्वार्थ नहीं, सबको सुखी करना है। देख रही हैं माताएं कि पता नहीं क्या कहा जा रहा है, समझ में आ रहा है? जिसको राजा बनना है उसको सुख देने के संस्कार धारण करने पड़ेंगे। हमारा राजयोग राज करने की ट्रेनिंग है। बाबा ने बहुत बातें सिखा दी, अगर आप उनको राजाई से जोड़ कर देखो, निस्वार्थ भाव, निर्दोष दृष्टि, दोनों के पीछे राजाई संस्कार छुपे हैं। निस्वार्थ, स्वार्थी सेवाओं में भी विघ्न डालता है। जिन्होंने आप में से इतिहास पढ़ा हो, न पढ़ा हो तो मैं बता देता हूं, राजवंश तब नष्ट हो गए जब उनका राजा आलसी हो गया, प्रजा की ओर ध्यान नहीं दिया, विषय वासनाओं में शराब पीने में मस्त रहने लगा, कोई ध्यान नहीं दूसरों की ओर, न सेना की ओर न प्रजा की ओर, तब राजवंश नष्ट हो गए। दूसरे राजवंश नष्ट हुए जब राजा क्रूर हो गया, जब उसने प्रजा को सताना प्रारंभ किया, जब सत्ता का दुरुपयोग हुआ, राजवंश नष्ट हुआ। यही चीज बाबा हमें यहां सिखाते हैं। विषय वासनाओं से तो दूर हमें ले ही गए बाबा, पवित्र जीवन दे दिया, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग नहीं, सेवा के लिए सत्ता मिलती है, दूसरों को सुख देने के लिए सत्ता मिलती है, नहीं तो सत्ता चली जाती है या सत्ता का सुख नहीं मिलता। सत्ता लोगों को टेंशन में ले जाती है, कोई भी जिम्मेदारी उन्हें परेशान करने लगती है, निमित्त भाव धारण कर लें। और ये बात बहुत अच्छी तरह जान लें, बाबा की अनेक मूल्यों का सार, हमारी स्थिति श्रेष्ठ होगी तो हमारा कारोबार स्वतः ही सहज निर्विघ्न रूप से चलता रहेगा। अनुभव होगा शांति वन वालों को, साक्षी होकर देख लें, जैसी हमारी स्थिति वैसा हमारा कार्य। बाबा की बहुत पहले मुरली भी चली है, तुम अपनी सेवाओं से, टीचर बहनों से बात करते हुए बाबा कहते थे, तुम अपनी सेवाओं से अपनी स्थिति को जांच सकते हो और अपनी स्थिति का प्रभाव सेवाओं पर देख सकते हो। हम देखते थे जहाँ की टीचर अंतर्मुखी है वहाँ के सब स्टूडेंट अंतर्मुखी है, जहाँ की टीचर अमृत वेले उठ के योग अच्छा करती है सब स्टूडेंट्स भी योग अच्छा करते हैं, जहाँ की टीचर खुद क्लास मिस करती है तो उन्हें क्लास के लिए भी सबको रोज बुलाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, आते नहीं वो क्लास में, ऑटोमेटिक है ये। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भगवान की मुरली थी। हम सभी, बाबा करा रहा है, हम निमित्त तो हैं लेकिन हमारे वाइब्रेशंस कार्यों को सफल करते हैं। बहुत बड़ी चीज, हम सब ध्यान देंगे, हमें यज्ञ को सफल करना है। चाहे आप गृहस्थ में रहते हैं, समर्पित हैं, यज्ञ को सफल करना है। गीता के तीसरे अध्याय में भी है, मुझे वो बात बहुत प्रिय लगती है, प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रचकर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, तुम इस यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करो, देवता तुम्हें मन इच्छित भोग प्रदान करेंगे। बिल्कुल यही की बात है, शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये महान यज्ञ रचा, और यज्ञ किसके हाथ में सौंप दिया, ब्राह्मणों के हाथ में, हम सब के हाथ में। अब देख लो, भगवान ने यज्ञ हमारे हाथ में सौंपा है, और यज्ञ भी क्या, युग बदलने वाला यज्ञ, कलयुग को समाप्त करने वाला यज्ञ, संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित करने वाला यज्ञ, ऐसा महान यज्ञ उसने हमारे हाथों में सौंपा है। फील करें सभी अपनी जिम्मेदारियों को, और कुछ न हम कर सके तो अपनी स्थिति को ऐसा अवश्य बनाएं कि हमारी स्थिति यज्ञ के लिए विघन न बने, हमारी स्थिति सबके विघन नष्ट करने वाली हो। ऐसा बनाएं कि हमारे चेहरे देखकर आने वाले सभी लोग खुश हों, उन्हें अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिले। तो हम सभी यज्ञ की जिम्मेदार आत्माएं, समझते हैं सभी अपने को जिम्मेदार, या यहां वाले जिम्मेदार हैं, सब जो अपने को जिम्मेदार समझे वही जिम्मेदार है। तो राज्य स्थापित करने के लिए कठिन मेहनत लाएं, आप सभी अपने को इसके इन विचारों को अपने अंदर ले चलें। हम केवल पुरुषार्थी नहीं, हम केवल यज्ञ की सेवा करने वाले नहीं, हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। लाएं अपनी डीप फीलिंग में इसको, हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। कष्ट होगा, सहन करना पड़ेगा, गाली खानी पड़ेगी, बहुत सारा विरोध होगा। राज कोई ले किसी से, अंग्रेजों से राज लेना चाहा तो उन्होंने 20-25 साल पूरा जोर लगा दिया, हर तरह से हर आंदोलन को कुचलने के लिए। कोई भी राजा यही करेगा, बात अंग्रेजों की नहीं। हम राज्य स्थापित कर रहे हैं तो आसुरी शक्तियां, मायावी शक्तियां संपूर्ण रूप से विरोध करती है ना, भिन्न भिन्न तरह से, सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से, उन्हें पहचान कर हमें अपने को शक्ति संपन्न बनाना है। बहुत बोल्ड, इंग्लिश का ये शब्द बहुत समझते होंगे आप में से, बोल्ड साहसिक, केवल शक्तिशाली नहीं, साहसिक, जो रुके नहीं, एक बार जिस पथ पर कदम रख दिए सो बोलो सो रख दिए, ये नहीं पीछे मुड़कर भी देखेंगे। जो बार बार पीछे मुड़कर देखते हैं वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, उनके तो कदम ही रुक जाते हैं, बाधाएं आने लगेगी। जो केवल आगे देखते हैं, केवल अपनी मंजिल को देखते हैं, वही मंजिल पर पहुंचते हैं। तो हमें याद रखना है, केवल हम ही राज्य स्थापित नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान सुप्रीम सद्गुरु गाइड कदम कदम पर मार्ग बता रहा है, ऐसे करो ऐसे करो। राज उन्हें ही मिलेगा जो माया को परास्त करेंगे। दूसरे का राज कौन ले सकते हैं जब वो युद्ध में उन्हें हराते हैं। हम भी माया के इस युद्ध में माया को पूरी तरह हराएंगे तो माया हारते हारते मैदान छोड़ जाएगी, राज स्थापित हो जाएगा। सभी मजबूत करें अपने को, भाई बहने, हमें माया को हराना है। और हमेशा ये याद रखना होता है, युद्ध में दूसरा पक्ष कमजोर नहीं है, ये हमेशा याद रखना। जिन्होंने युद्ध में ये मान लिया दूसरा पक्ष तो कमजोर है, हरा देंगे हम, वो हार गए। दूसरा पक्ष भी बहुत शक्तिशाली है, इसलिए हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। युद्ध में विजयी होने के लिए ये, चलो फिर बाबा की मुरली याद करो, दिव्य अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, अच्छी अच्छी ढाल, तलवारें, हम एटम बम भी यूज कर सकते हैं, घनश्याम, एटम बम्स, हाइड्रोजन बम भी हैं हमारे पास, मिसाइल्स भी हैं बहुत ज्यादा। हमारे शुभ संकल्प मिसाइल की तरह दूसरों पर अटैक करेंगे अच्छी भावनाओं से, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों को बदलेंगी, हमारे ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हमें सुरक्षित करेंगे, ड्रामा का ज्ञान ढाल बनकर हमें बचाता रहेगा, और योग बल सबसे बड़ी शक्ति जो चारों ओर हमारे एक पावरफुल किला तैयार कर देता है, जिस किले में माया प्रवेश नहीं कर सकती। ये सब हमें अपने पास रखना है, दिव्य अस्त्र शस्त्र। मुरली है बाबा की, मुझे याद आ गई अभी, दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त करने हैं तो बहुत अच्छी एकाग्रता योग में चाहिए, दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। दिव्य अस्त्र शस्त्र माना है दिव्य शक्तियां, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, ज्ञान के बहुत पावरफुल पॉइंट्स हैं, लेकिन हमें समय पर याद आए। करण के लिए क्या दिखाया, जब उसका अंतिम समय आ गया तो सुश्राप दे दिया था परशुराम ने कि तुम ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल जाओगे, क्योंकि वो अंतिम हथियार था ना, उसे पहले नहीं चलाया जाता था, उससे महाविनाश होता था। तो कहा जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा तुम उसे भूल जाओगे। अब उसने सोचा ब्रह्मास्त्र चला देता हूं, मंत्र याद ही नहीं आ रहा है, विस्मृत हो गया। ये बात हम सबके साथ न हो जाए कि समय पर ज्ञान की पावरफुल बातें याद ही ना आए, बाद में याद आए, ये याद आता तो कितना अच्छा होता। इसलिए बहुत जरूरी है सभी अपने पास, मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूं, कम से कम 16 है, मैं 25 कहता था, भी कम कर देता हूं थोड़ी, 16 है पावरफुल पॉइंट्स रखें अलग से लिख के। छोटी डायरी मिलती है ना आजकल, वो 4-5-6 इंच की, एक पेज पे एक पॉइंट लिखो, उन्हें पढ़ते रहो, याद आएंगी, याद आएंगी। जब जब हम याद करेंगे, मुझे याद है शांतिवन का संपूर्ण वो सीन, कुछ झंझट हुआ था, अव्यक्त बाबा आए थे और बाबा ने कहा था बेफिकर बादशाह, टेंशन फ्री। आ गया याद, टेंशन फ्री, सारी टेंशन बाप को दे दो, बेफिकर बादशाह बन जाओ। मेरे साथ भी एक घटना हो गई इस यात्रा में। थाईलैंड से सिंगापुर जा रहा था प्लेन, सिंगापुर में बादल और बारिश हो रही थी, चक्कर लगा के 5-7 मिनट प्लेन वापस पहुंच गया। हम पहुंच गए मलेशिया। हम देखे मलेशिया में हम आ गए, हमने गलत प्लेन तो नहीं पकड़ लिया? तो गलत तो वहां बैठ नहीं सकते, वहां तो चेकिंग बहुत होती है। मैंने पूछा, वो थाई भाषा बोलते थे और इंग्लिश भी ऐसी थी समझ में नहीं आती। कहा मौसम खराब था, हो गए, हमें पता नहीं वहां कितनी देर रुकना पड़ेगा। तो मैंने, मुझे याद आया तुरंत, कोई चिंता नहीं, फिकर सारे बाप को देकर फकुर ले लो। तुरंत याद आ गया कौन हमारा साथी है। फिर मैंने 3 घंटे हम वहां रहे तो अच्छे अच्छे अभ्यास कर लिए। 3 घंटे क्यों वेस्ट किए जाएं, बहुत लंबा समय है, ये तो पता नहीं था कितने घंटे बीतेंगे, शायद रात भी बीत सकती है वहां। तो समय सुंदर बीत गया, मन एकदम आनंदित हो गया। जब 11 बजे हम पहुंचे सिंगापुर तो मैं बहुत फ्रेश था, ऐसा नहीं था कि थक गए, कब के चले हुए, 2 बजे चले थे, 4 बजे तो पहुंच जाना था, पहुंच रहे 11 बजे, बिल्कुल नहीं। ये हम सबको सीखनी है कला, जो चीजें हमारे वश में नहीं है उन्हें स्वीकार करके उस टाइम का सदुपयोग कर लेना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं, कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए टेंशन में फटाफट परेशान। वहां मैं देख रहा था सबको परेशान, क्या हो गया आज, ये पता नहीं कब चलेंगे, क्योंकि वो किसी के हाथ में होता ही नहीं। उधर वाला एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वो और परमिशन देगा, अब आ सकते हो, खाली है सब। इधर वाले चलने के लिए परमिशन देंगे, कभी इधर वाले दे रहे तो उधर वाले मना कर रहे हैं, बहुत समय बीत सकता है। तो हमें समय को ठीक ठीक यूज कर लेना चाहिए। और 16 पॉइंट्स सब लिखेंगे अपने पास, चिंता ना करो, मैं बैठा हूं। लेकिन जब चिंता वाली बात आती है तो बाबा उधर ही बैठा रहता है, वो पढ़ते ही नहीं, तब कहते हैं ठीक है बाबा बैठा है, पर चिंता तो हमारी है ना, ये नहीं, यूज करो इसे, भगवान ने कहा है दे दो, उसे समर्पित करो और देखो क्या करता है वो। उसकी शक्तियों से बाहर कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारी समर्पणता में कमी हो जाती है, हमारे विश्वास में कमी हो जाती है, तो ये सब गड़बड़ होती है। तो ये सब हमारे दिव्य अस्त्र शस्त्र हमें अपने पास रखने हैं, लेकिन साथ में हमें स्वयं को राजा भी बनाना है। राजा माना जो सिंहासन पर बैठता है, सिंहासन माना सिंह का आसन, शेर का आसन। राजा वही बनेंगे जो शेर समान पावरफुल बनेंगे, जैसे शेर जंगल में अकेला होते हुए निर्भय होकर घूमता है, उसे पता है मैं यहां हूं तो आसपास कोई आएगा ही नहीं, पता है ना उसे। हमें भी पता हो, हम अगर मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर रहते हैं तो कुछ आएगा ही नहीं हम तक, छाया ही नहीं आएगी न माया की न परिस्थितियों की, और अगर परिस्थिति आ भी गई तो हार खाकर वापस चली जाएंगी। हमें शेर समान राजा शक्तिशाली, इसके लिए कौन सा अभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसको बहुत गहरी फीलिंग में लाना है, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूं। दूसरा अभ्यास, बाबा से योग अभ्यास द्वारा शक्तियां प्राप्त करना। तीसरा अभ्यास, इस पर भी गौर करना है सबको, शक्तिशाली वही बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य के पास शक्तियां तो हैं लेकिन वो अपने को शक्तिशाली नहीं समझते, होता है ना दुनिया में भी ऐसे, शक्तिशाली बनने के लिए और शक्तिशाली वही हैं जो शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करें। इसलिए अपने मन में शक्तिशाली संकल्प लाते रहें, उससे हमारी शक्तियां जागृत होती रहेंगी। कौन से हैं शक्तिशाली संकल्प, मैं कुछ सुना देता हूं फिर आपको ख्याल में आते रहेंगे। मैं अकेली नहीं, मेरे साथ भगवान है। मैंने इस माया को कल्प कल्प जीता है, अब भी विजय मेरी ही होगी। संसार की कोई भी समस्या, तूफान, परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला ही नहीं सकती, क्योंकि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। हम इस सृष्टि चक्र में अनेक बार मुख्य पार्ट बजा कर आए हैं। मैं हीरो एक्टर हूं, बहुत शक्तिशाली हूं। स्वयं भगवान ने अपनी शक्तियां मुझे दे दी हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। और याद रहेगा, जो पवित्र हैं वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। सभी ध्यान दें इस बात पर, कई पवित्र आत्माएं बहुत भोले हो गए हैं। भोला होना तो ठीक है, पर शक्तिशाली भी। तो पवित्र आत्माएं ही शक्तिशाली हैं। पवित्रता का बल और योग बल जिनके पास है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई होता ही नहीं। अपने को याद दिलाएं, हम बहुत शक्तिशाली हैं। याद करें, जिसने काम महावेरी को जीता हो, उसे शक्तिशाली संसार में कोई नहीं। आपको थोड़े बहुत संकल्प चलते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। काम तो जीत लिया, छोड़ दिया विषय विकारों को, तो ये जान लें, ये मान लें, हम बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। सभी भाई ध्यान दें, कुमार ध्यान दें, संकल्प दो चार चलते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी ये यात्रा है प्योरिटी की। लेकिन हम बहुत शक्तिशाली हैं, ये सभी स्वीकार कर लें। सभी समर्पित भाई बहने ध्यान दें, जिन्होंने अपने जीवन को बाबा पर समर्पित कर दिया, जिन्होंने संसार की सभी इच्छाओं को एक तरफ फेंक दिया नहीं, बीके कॉलोनी वाले बहुत सारे आ गए, कोई इच्छा नहीं संसार के साथ, छोड़ छाड़ के इधर आ गए, वो शक्तिशाली हैं। अपनी शक्तियों को रियलाइज करें, ये नहीं छोटी मोटी बातों में उलझ कर हम अपनी शक्तियों को भूले रहते हों। समर्पित करना छोटी बात नहीं है। कल एक का फोन आया मुझे, कन्या बीए में पढ़ रही है, कहा मैं समर्पित होना चाहती हूं। मैंने कहा परिचय तो बताओ, मैं बीए कर रही हूं, मेरा नाम ये है। मैंने कहा और तो कुछ बताओ, यान में कब से चल रही है? 2 दिन हुए हैं। मैंने उसे पूछा, तुम्हें समर्पणता का कैसे पता चला? कहा नहीं, बस जैसे ही मैं वहां गई और मुझे तो लगा बस मुझे यहां ही समर्पित हो जाना है। देखो ये पूर्व जन्मों के संस्कार है ना, ये ऐसा केस पहली बार देखा मैंने भी। 2 दिन, मैंने कहा अभी 7 दिन का कोर्स तो पूरा करो, योग सीखो, अपना बीए भी पूरा कर लो, फिर सेवा करना, बहनों के साथ रहना, हो जाना समर्पित। मैं जानता हूं वो समर्पित होगी ही, क्योंकि वो पूर्व जन्म की समर्पित आत्मा कोई है, जिसको 2 दिन बस आते ही लगा क्यों यही रहना है मुझे। तो ये शक्तिशाली आत्माओं की पहचान है, जो संसार की सभी इच्छाओं को त्याग दे, जो विषय वासनाओं से किनारा कर ले, और भी जो कर्मेंद्रियों के रसों पर विजय प्राप्त कर ले, ये सब आत्माएं बहुत शक्तिशाली होती हैं। तो हम सब शक्तिशाली हैं, स्वीकार कर लें। सभी राजा बनना है, राजा के लिए मैं हमेशा 3 क्वालिटी सार में सुनाता हूं, बहुत शक्तिशाली, बहुत बुद्धिमान, धैर्यवत, बहुत चरित्रवान अर्थात पवित्र। बुद्धिमान के साथ अगर व्यक्ति धैर्यवत भी है तो वो अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा प्रयोग कर लेता है, उसके निर्णय संपूर्ण होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। कोई व्यक्ति बुद्धिमान तो बहुत हो, जल्दी कर दे तो निर्णय गलत हो सकते हैं। तो हम यहाँ बाबा से दिव्य बुद्धि भी प्राप्त कर रहे हैं, पवित्रता के बल से बहुत चरित्रवान बन रहे हैं, सहज रूप से सभी याद रखेंगे, जो जितने पवित्र वो उतने ही चरित्रवान। जो मैं आपको कह रहा था, राजाओं ने राजाई तब गंवा दी, राजवंश नष्ट हुए जब वो चरित्रहीन हो गए। मौर्य वंश बहुत शक्तिशाली, चंद्रगुप्त मौर्य शुरू हुआ, अशोक सम्राट उसी के हैं, 7 पीढ़ी चली, 7वां बस विदेशी जो आने लगे वहां उनमें अटकने लगा, विषय वासनाओं की ओर चलने लगे, प्रजा पर ध्यान देना कम हो गया, और आखिर उसी के सेनापति ने उसको सिंहासन पे ही मारा और सत्ता दूसरे वंश के हाथ में आ गई, क्योंकि सारी प्रजा और सारी सेना उसके विरुद्ध हो गई थी, किसी ने उसको साथ नहीं दिया, उसके अंगरक्षक भी छोड़ के भाग गए। बहुत चरित्रवान बनना, जो यहां चरित्रवान होंगे चारों युग उनके चरित्र से लोग प्रेरणाएं लिया करेंगे, और चरित्र अर्थात प्योरिटी, चरित्र अर्थात सुख देना, चरित्र अर्थात सुभावनाएं रखना, श्रेष्ठ चरित्रवान अर्थात अच्छे कर्म करना। तीनों पर हम ध्यान देंगे, तीनों बाबा यहां हमें दे रहे हैं, और फाइनल चीज जिसके अभ्यास से हम इस स्थिति को प्राप्त करेंगे वो है स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी बहुत अभ्यास चाहिए, मैं आत्मा शक्तिशाली, मास्टर सर्वशक्तिमान, मस्तक मेरा सिंहासन, मैं इस सिंहासन पर विराजमान, मन बुद्धि की मालिक, संस्कारों की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक, इस देह से अलग, ये बहुत अभ्यास चाहिए। थोड़े दिन में इससे काम नहीं चलता, सालों साल अभ्यास करना पड़ेगा, तो मन बुद्धि संस्कार हमारे अधीन हो जाएंगे। सबने मुरलियां सुनी हैं, हमारी 2 सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि, कर्मचारी ये सब संस्कार, कर्मेंद्रियां, और कभी बाबा ने कहा मंत्री मन और बुद्धि मुख्यमंत्री और राजा आत्मा, तो राजा के कंट्रोल में रहेंगे ये मुख्य कार्यकर्ता कर्मेंद्री भी, मन और बुद्धि मंत्री भी। लेकिन राजा बनना पड़ेगा, सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, सभी ने सुनाई है जो अकाल तख्त पर बैठेंगे वही राज तख्त पर बैठेंगे। तो अब हम ये अभ्यास करेंगे बहुत अच्छा, और इस नशे में स्वयं को रखेंगे, हम अपना राज स्थापित कर रहे हैं। जरा इस पर गहराई से चिंतन करना, हम जानते हैं सबके अंदर ये बात नहीं जाती है, कई तो सोचते हैं हमें क्या लेना देना, हम तो सतयुग में जाएंगे, जिसको राजा बनना हो वो दिमाग मारे इन सब चीजों में, हमें क्या करना है, नई टेंशन लेके हम क्यों अपनी सुख शांति नष्ट करें, कई ये भी सोच सकते हैं। लेकिन जो राजा बनने वाले हैं उनको तो ये फीलिंग अवश्य लानी है, हम अपना राज स्थापित कर रहे हैं योग बल से श्रीमत पर चलकर। और ये अभ्यास बहुत करेंगे, सभी बहुत अच्छी तपस्या करेंगे, भूलेंगे नहीं, बहुत जरूरत है संसार को हमारी। और इस विनाश काल में जहां जहां पवित्र आत्माएं और शक्तिशाली आत्माएं उपस्थित होंगी, वहां की अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। मैं बहुतों को ये उत्तर दिया करता हूं, विदेशी बहुत और भारत वाले बहुत, एक संकल्प लेकर जीते हैं कि जब विनाश होगा हम मधुवन में भाग आएंगे। अब कोई मधुवन जा सकता है? सारी सड़कें टूट जाएं? क्यों ना हम ऐसा सोचें, जहां हम होंगे वहीं बाबा होगा, जहां हम और बाबा होंगे वही मधुबन कहलाएगा, और जहां हम होंगे वहां अनेक आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो जिनकी हमें रक्षा करनी है उनको छोड़कर हम भाग खड़े हों तो हमारे भगत पीछे पीछे भागे नहीं आएंगे कि हमारी इस देवी कहां भागी जा रही है हमें छोड़कर। इसलिए भागने की जरूरत नहीं, जहां है वहीं योगयुक्त, वहीं मधुबन है, वहीं पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। तो सभी योग के चार्ट पे भी ध्यान देंगे, हमें बाबा के यज्ञ को भी सफल करना, निर्विघ्न रखना है, और वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे फैलाने हैं। अब हम योग करेंगे 5 मिनट। ये घड़ी तो पीछे चल रही है, मैंने इसलिए अपनी घड़ी रख ली थी। ट्यून बजाएंगे गीत? ट्यून बजाओ। सभी एक फीलिंग में बैठेंगे, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं। मैं ये संकल्प आपको रिपीट करूंगा 2-3 बार। अपने स्वरूप को देखें, मेरे अंग अंग से, आत्मा से भी और शरीर के अंग अंग से भी लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं, गोल्डन किरणें, बहुत सुंदर। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, संसार के आकर्षण से दूर। इस देह से निकल कर अब चली अपने धाम, परम धाम में, जहां ज्ञान सूर्य की तेजस्वी किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं उनकी किरणों के नीचे हूं, उनकी किरणें मुझ में समाकर नीचे संसार में फैल रही है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता, ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही है। ओम।